अगला टॉपिक अब हम देखेंगे कि फितने किस किस किस्म के हैं, जिसमें सबसे पहला फितना क्या है, जहाबुल इल्मी, इल्म का उठ जाना। किताब से देखें तो पेज नंबर 108 है। इल्मे दीन का उठ जाना और जहालत का आम होना खुरबे क़यामत की निशानी है। आप कह सकते हैं कि यहाँ से अब हम अलामत सुगरा को शुरू कर रहे हैं, क़यामत के करीब आने की छोटी छोटी अलामतें क्या हैं कि इल्म उठ जाएगा। कौन सा इल्म? दुनिया का तो बहुत है, लेकिन दीन का इल्म उठ जाएगा। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले ऐसे दिन आएंगे, अब आप सोचिए ज़रा कैसे दिन आएंगे, जिनमें जहालत छा जाएगी, इल्मे दीन उठ जाएगा और हरज यानी खून रेजी आम हो जाएगी। इसे बुखारी ने रिवायत किया। इसी मौजू की एक और रिवायत है, फिर इस पर हम डिस्कशन करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता के इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत फैल जाएगी और हरज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि हरज क्या है? आपने इरशाद फरमाया कि कत्ल। अहमद ने रिवायत किया, उलमा की मौत कसरत से होगी, जिसकी वजह से इल्म दीन उठता चला जाएगा। जी, क्या आप इसकी गवाही देते हैं कि दीन का इल्म उठ गया? सिर्फ और किसी को नहीं, जिनको हम सोचते ना कि फलां तो जी उनके अंदर तो दीन नहीं, उनको छोड़ दें अभी, सिर्फ अपने इर्द गिर्द के दीनदार महज़ब शहरी, जो जिनको हम ख़ानदानी लोग कहते हैं, जिनको हम शरीफ शहरी कहते हैं, आप ज़रा उनको जमा करके उनसे दीन की चंद बातें पूछ लें। नमाज रोज़े की हद तक नमाज रोज़ा है हमारे पास, लेकिन आप देखिए कि आज दीन का इल्म कितना कम है। आप कुछ भी ना करें, सिर्फ अपने घर आज जाके अपने घर में बच्चों बड़ों से चंद दीन के बेसिक क्वेश्चन पूछ लें। लोग कहेंगे जी हम तो इसमें कोरे अनपढ़ हैं। ख़ुद को हनफी कहने वाले ज़रा जाके उनसे इमाम अबू हनीफा के बारे में 10 सवाल पूछ लें, उनको नहीं पता होंगे। ख़ुद को सुन्नी कहने वालों से कोई 10 हदीसें सुन लें, जिससे सुन्नत की अहमियत का पता चले, उनको नहीं पता होगा। ख़ुद को अहले हदीस कहने वाले ख़ानदानों से जाके उनके बच्चों बच्चियों से कहें कि 10 हदीसें मतन और सनत के साथ सुना दो। इससे ज़्यादा और क्या शर्मिंदगी होगी कि हम खुद को मुसलमान कहने वाले खुद इस्लाम की बेसिक नहीं मानते। सिर्फ एक सवाल आज देती हूँ, आप जाके सब पूछिएगा अपने घर वालों से। कलमा तो हम सभी पढ़ते हैं ना, कलमे की कितनी शरायतें और कौन सी, व्हाट आर दी शरायत ऑफ दी कलमा, शुरूत ला इलाहा इल्लल्लाह कितनी है, इसका जवाब कल के सेशन में दीजिएगा या अगले सेशन में, कि आपको क्या नताइज भुगतने पड़े। और अगर मैं जुरत करूं तो आपसे भी पूछ सकती हूं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप में सबको पता होगा। आगे क्या बात करूं, ये है इल्म के ना होने की बातें। आज हमारे बच्चों को इल्म है गाड़ियों का, फरारी क्या है और लेक्सस क्या है और मज़्डा कौन सी है और स्विफ्ट कौन सी है और लैंड क्रूज़र, क्रिकेटर्स का पता है, गुलकारों का पता है, आर्टिस्टों का पता है, फिल्मों का पता है, इतने मुश्किल मुश्किल नाम है, सब पता है, इल्म किधर है? देखिए ये वो रूट कॉज है कि जिसके साथ ही सारे फितने उठते हैं। तो फिर क्या करें इस पर, हम आगे चलें, ख़त्म करें बुक को? नहीं, नियत करें। हम सब जो लोग सुन रहे हैं, बाकियों को तुम नहीं कहते कुछ, हम सब तो पहले अपना इल्म से ताल्लुक़ जोड़ें। देखिए इल्म में और मालूमात में बहुत फ़र्क होता है। मालूमात आपको कहीं से भी मिल जाती हैं, इंफॉर्मेशंस, लेकिन इल्म के लिए आपको तालिब इल्म बनना पड़ता है। हमारे ज़वाल की आज बहुत बड़ी दलील ही ये है, या इसकी वजह क्या है कि आज हमें इल्म का शौक़ नहीं रहा। गाड़ी चलाने से पहले कुछ सीखना पड़ता है, कुछ क्लासेस लेनी पड़ती हैं, लेसन्स लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल करते हैं, थेरी टेस्ट पास करते हैं, फिर जाके वो आपसे गाड़ी पार करवा के देखते हैं, फिर क्या देते हैं आपको, लाइसेंस देते हैं, किसका, एक रोड पे गाड़ी चलाने का, और शायद फिर एक ही ख़ास किस्म की गाड़ी चला सकते हैं आप। मैनुअल का टेस्ट दिया है तो आप ऑटोमेटिक नहीं ले सकते, ऑटोमेटिक है तो वो नहीं कर सकते। बल्कि अब नॉर्वे में तो मैंने ये भी सुना है कि वहाँ सर्दियों की ड्राइविंग और गर्मियों की ड्राइविंग का फ़र्क होता है, आप स्नो पर चला सकते हैं कि नहीं, हिली इलाकों में चला सकते हैं कि नहीं, गाड़ियों के टायर फ़र्क है और उनकी इंश्योरेंसेस और उनके सिखाने के खर्चे सब फ़र्क हैं। तो जब दुनिया की एक सड़क पे गाड़ी चलाने के इतने इल्म पैरते हैं, तो सिराते मुस्तकीम पे चलने वाले को कोई इल्म नहीं चाहिए। और उस पर कितने रिलैक्स होकर हम कहते हैं नहीं मौका ही नहीं मिला, सोचा ही नहीं, बच्चे छोटे हैं, खाना पकाना होता है, मियाँ साहब नाराज़ हो जाएंगे। कभी आपने और मैंने ये सब कुछ कहकर दुनिया की चीज़ें छोड़ी? दुनिया के इल्म के नाम पर हम क्या कुछ नहीं कर देते, लेकिन दीन का साथ क्या है, यानी ये वो रोग है कि जिसको अगर आज हम महसूस कर लें और नियत कर लें कि मुझे बाकियों की तो नहीं परवाह, मैं और मैं अपने घर वालों को कोशिश करके दीन के इल्म के साथ जोड़ती हूँ, तो आप देखिएगा कि हम सब ने यहाँ बैठ के माशाल्लाह कितने 100 घरानों की अंदर से जहालत के खात्मे का फैसला कर लिया। दुनिया में कोई कुछ भी करे लेकिन हम सबको अपनी फिक्र करने की ज़रूरत है। अब इससे अगली अलामत जो इससे बिल्कुल रेलेवेंट है, आप देखेंगे कि जो पहली बात है ना कि इल्म का ना होना, इसको अब आप हर नई अलामत सुग्रा में ढूंढिएगा। अगली अलामत क्या है? अकूकुल वालिदैन। मेरे साथ दोहराइए, अकूकुल वालिदैन। पढ़िए जी, जैसे हा होता ना इसी तरह आइन पढ़ेंगे, उकूकुल वालिदैन। उकूक कहते हैं नाफरमानी को, वालदैन की नाफरमानी, खास तौर पे पेरेंट्स की डिसोबीडियंसी के लिए लफ्ज आता है। क्यामत के करीब औलाद अपने वालदैन की नाफरमान और गुस्ताख हो जाएगी। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ तशरीफ़ फरमाते, एक आदमी हाजिर हुआ और पूछने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया, क़यामत के बारे में जिससे पूछा गया है वो पूछने वाले से ज़्यादा नहीं जानता, यानी तुम्हारी तरह मुझे भी इसका इल्म नहीं, लेकिन मैं तुझे इसकी बास निशानियाँ बता देता हूँ। जब औरत अपना मालिक यानी नाफरमान औलाद जने, तो ये क़यामत की निशानियों में से है। जब नंगे पांव नंगे बदन वाले लोगों के सरदार बने, यानी पढ़े लिखे नहीं होंगे, बद्दू और गंवार टाइप के, तो ये क़यामत की निशानियों में से है। और जब बकरियों के चरवाहे बुलंदो बाला इमारतें तामीर करें, तो ये क़यामत की निशानियों में से है। क़यामत का वक्त इन 5 चीज़ों में से है जिनका अल्लाह ताला के सिवा किसी को इल्म नहीं। फिर आपने ये आयत तिलावत फरमाई कि बेशक क़यामत का इल्म अल्लाह ही के पास है, बारिश वही बरसाता है, यानी इसको इल्म है कि बारिश कब होगी, माओ के रहमों में जो कुछ है इसे भी वही जानता है, कोई शख्स नहीं जानता कि कल वो क्या करेगा, अल्लाह जानता है, ना ही कोई शख्स ये जानता है कि वो किस जगह फौत होगा, इसको अल्लाह ही जानता है। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया। तो अब आप देख सकते हैं कि माँ बाप की नाफरमानी उसकी बड़ी वजह क्या है, इल्मे दीन से जहालत। आज भी अगर आप अपने बच्चों के अंदर इल्म का शौक़ पैदा करते हैं ना, सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा किसको होगा? आपको होगा। आप अपने बच्चों को देखिए, हर घर में हर बच्चे का अलग मिजाज होता है। बाज़ दफ़ा तो हम कोशिश भी नहीं करते लेकिन हमारा एक बच्चा खुद ही अल्लाह के हुक्म से किसी अच्छी सोहबत की वजह से नेक हो जाता है। ऐसी सिस्टर्स हैं, जैसे एक माँ चंद दिन पहले मिली तो अपने बच्चे की बड़ी तारीफ़ कर रही थी, कहनी मुझे उसका कोई रिश्ता बताएं, फिर साथ साथ कह रही हैं यकीन करें उसके नेक होने में हमारा कोई दखल नहीं है, उसको किसी जगह कोई अच्छा दोस्त मिला कॉलेज यूनिवर्सिटी में। और मैंने कहा ज़रा देखूँ किस किस्म का नेक है, क्योंकि आजकल नेकों की भी तो बड़ी किस्में हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो उन्होंने सिम्टम्स बताए वो तो बहुत अच्छे थे, सलफ़ी, और उसकी सोच बिल्कुल कुरान सुन्नत से लग रही थी। तो वो कह रही कि हमें नहीं पता ये कैसे नेक हो गया, तो ये किस्मत की बात थी ना। और जिन बच्चों के अंदर नेकी आती है ना, वो क्या कहते हैं, चूँकि हमारे अम्मी अब्बू ने हमारी बचपन में खिदमत की थी तो हम इनकी बड़े होके करेंगे, अब हम इनके काम करें। मैं ऐसे लोगों की बातें सुनते हैं हम लोग, तो आप देखेंगे जिसको अल्लाह का शौक़ होगा ना, उसको फिर माँ बाप का भी शौक़ होगा। तो जितना हम अपनी ज़िंदगी में बच्चों को दीन का इल्म देंगे, हमारे मरने के बाद ये हमारे ही लिए दुआएं करेंगे। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि हम इस पर बात करें। और ये मौजू ऐसा है कि हमने बहुत कहा हुआ है, जो लोग नए हैं सुनने वाले, वेबसाइट पे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लेक्चर्स मौजूद हैं कि जिसमें पेरेंटिंग पे भी और पेरेंट्स के हकूक पे एक सीडी भी बनी थी, बल्कि इसी घर में आज से कुछ साल पहले हुआ था एक लेक्चर कि वालदैन मेरी जन्नत मेरी जहन्नम, या शायद माँ की दुआ, कुछ इस तरह की का लेक्चर है। तो ज़रूर इस मौजू पे गौर करें कि हम अपने बच्चों को दीन का इल्म कितना देते हैं। तीसरी या अगली अलामत क्या है? फुकदानुल अमल। इल्म तो था ही कम, है अगर तो अमल का नापैद होना, यानी क़यामत की छोटी अलामतों में एक अलामत क्या है कि लोग अमल नहीं करेंगे। अल्लाह पहले तो मुझे ही इस पे अमल की तौफीक दे जो मैं आपको कह रही हूँ। क़यामत के करीब कुरान और हदीस पढ़े पढ़ाए जाएंगे लेकिन इन पर अमल नहीं किया जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाहुम्म ला तजअलना मिन्हुम। हज़रत ज़ियाद बिन लबीद रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लम के सामने किसी बात का जिक्र हुआ तो आपने इरशाद फरमाया, ये इस वक्त होगा जब इल्म उठ जाएगा। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्म कैसे उठ जाएगा जबकि हम कुरान पढ़ते हैं, अपनी औलाद को कुरान पढ़ाते हैं और वो आगे अपनी औलाद को कुरान पढ़ाएंगे और ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। आपने फरमाया, ज़ियाद तुझे तेरी माँ गुम पाए, ये एक प्यार का मुहावरा, जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना, तेरा बेड़ा तर जाए, देखने में एक गाली लगती है लेकिन दुआ है कि तुम्हारी कश्ती ना डूबे। इसी तरह अरब लोग कहते थे, तुझे तेरी माँ गुम पाए, मैं तो तुझे मदीना के समझदार लोगों में शुमार करता था। क्या ये हकीकत नहीं कि यहूदो नसारा तौरात और इंजील को पढ़ते हैं, लेकिन इनमें जो कुछ है इस पर किसी चीज़ पर अमल नहीं करते। ये इब्ने माजा की रिवायत है। क्या ऐसा आज दिखता? आप देखिए कि इतना दीन को नुकसान आज बेदीनों ने नहीं पहुंचाया जितना बेअमल आलिमों ने पहुंचाया। बाज़ दफ़ा लोग सोचते हैं कि इल्म की बातें जो कर लेते हैं तो क्या अब अमल भी हम ही करें? इल्म की बातें हम करते हैं, अमल की कोई और करे? इल्म हम लोगों को सिखाते हैं, अमल कोई और सिखा दे? तो ये बात से असर निकालने वाली बात है। अपने लिए नियत करें, जो बात सुनती हूँ उस पर फ़ौरन से पहले अमल करूँगी। ख़ास तौर पे अगर आप कुरान के तालिब इल्म हैं तो इस पे तो कभी अपने आप को माफ़ ना करें। कभी फारिग हों तो बैठें, कितने सिपारे पढ़ चुकी हूँ, हर एक अपनी अपनी क्लास का सोचे। किसी क्लास में 10 होंगे तो किसी में 2 होंगे तो किसी में 6 होंगे। पूछिए, क्या इस हिस्से में आने वाले अहकामात पे मैं अमल कर चुकी हूँ? हज़रत इब्ने उमर का एक कौल है, कहते हैं कि हमने इल्म और अमल का सफ़र साथ साथ तय किया। 8 साल में इन्होंने सूरत बकरा ख़त्म की थी। एक बात पढ़ते, गौर करते, अमल करते, फिर दूसरी बात लेते। तो आप देखिए, अब इसका ये मतलब है कि हम पढ़ना छोड़ दें? नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे तो ये एहसास भी ख़त्म हो जाएगा कि हम अमल नहीं करते। कम से कम पढ़ने के दौरान अमल कम भी हो, एहसास तो बाकी होता है। और मैं ये कभी नहीं मान सकती कि आप ठीक तरीके से कुरान पढ़ें और आपके अंदर अमल ना पैदा हो। तसल्लियों वाला, झूठे दिलासों वाला इल्म ले लें तो वो और बात है, लेकिन सच्चा इल्म लेने के बाद तो बंदा हर वक्त खुद को ही खंगालता रहता है। इसी तरह आप देखिए कि इल्म की कमी का एक और असर क्या दिखेगा क़यामत की अलामत में, कि अमानत का उठ जाना, रफुल अमानती, यानी लोगों के अंदर से ईमानदारी चली जाएगी। क़यामत से कबल ऐसा वक्त आएगा कि अच्छा भला ईमानदार आदमी रातों रात बेईमान हो जाएगा। अस्तग़फिरुल्लाह। दुआ करिए, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह मुझे ऐसे लोगों में ना करना, मैं ऐसी ना बन जाऊँ। ईमानदारी इस तरह ख़त्म होगी कि ईमानदारी की मिसाल देने के लिए सिर्फ एक आध आदमी ज़िंदा होगा। यानी लोग कहेंगे, हाँ वो फलां, अच्छा उसकी तरह तुम ईमानदार हो। और ये मिसाल कब दी जाती है? जब कोई किसी जगह में कोई एक ही अच्छा हो। जैसे मिसाल है कि आप इसको समझिए पिछले टॉपिक के साथ, कि माँ बाप की फरमाबरदारी या नाफरमानी की बात है। तो आज के दौर में क्या ख़ानदानों में किसी के अच्छा होने की दलील देने के लिए कोई एक आधा ही नाम नहीं जहन में आता? अच्छा तुम फलां की तरह अपनी माँ की खिदमत करते हो, अच्छा वो फलां की तरह अपने बाप की बात मानता है। अमूमी मिजाज औलादों का अमूमी सा है। तो बिल्कुल इसी तरह बहुत थोड़े लोग ईमान पर रह जाएंगे। बज़ाहर बड़े बड़े अक्लमंद, मुदब्बिर और ईमानदार नज़र आने वाले लोग भी बबातिन बेईमान होंगे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। ऐसा ना हो कि लोग हमें क्या समझें और अंदर हमारा ईमान से खाली हो। हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, एक अच्छा भला ईमानदार आदमी रात को सोएगा और इसके दिल से ईमानदारी निकाल ली जाएगी, बस एक स्याह दाग की तरह ईमानदारी का निशान बाकी रह जाएगा। अगले रोज़ सोएगा तो रही सही ईमानदारी भी इसके दिल से निकाल ली जाएगी, और सिर्फ आबले की तरह एक हल्का सा निशान बाकी रह जाएगा। जिस तरह आग का एक अंगारा अपने पाँव पर लगाने से आबला फूल जाता है, जिसका निशान तो होता है लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं होता। अल्लाह अकबर, कितना डर लग रहा है। मेरा तो अजीब हाल है कि एक तो वो है ना जिसको लोग भी कहते हैं कि ये बेदीन है, ये झूठा है, लेकिन ये उसकी बात है जिसको लोग दीन पे समझते हैं लेकिन अंदर दीन नहीं है। फिर इसके बाद आपने फरमाया कि यहाँ तक ईमानदार आदमी की मिसाल सिर्फ चंद लोग रह जाएंगे। लोग कहेंगे फलां ख़ानदान में एक ईमानदार आदमी मौजूद है, और हाल ये होगा कि एक आदमी के बारे में लोग कहेंगे फलां बड़ा अक्लमंद है, बड़े ज़र्फ़ वाला है, बड़ा बहादुर है, लेकिन इसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं होगा। आज मैंने खुद सिस्टर्स के मुंह से ये बात सुनी है, मेरे शौहर हैं बड़े नेक, बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे दिल के हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। मैं कहती हूँ, अच्छा ये किस किस्म के नेक हैं? वो नेकी क्या है? किसी को सताते नहीं, गीबत नहीं करते, घर के काम कर लेते हैं, गुस्सा नहीं करते। यानी एथिक्स को लोग दीन के ऊपर ले आते हैं, हालांकि वो दो बिल्कुल फ़र्क चीज़ें हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं कि मुझ पर एक ऐसा वक़्त गुजर चुका कि मुझे इस बात की कतन परवाह ना थी कि किससे तिजारत करूं किससे ना करूं। अगर मुसलमान होता तो इस्लाम इसे मजबूर करता कि वो बेईमानी ना करे, ईसाई होता तो इसके हाकिम इसको मजबूर करते कि वो बेईमानी ना करे। जैसे आज के नॉन मुस्लिम मुल्कों में रूल्स इतने सख्त होते हैं हुकूमत की तरफ से कि हमें टैक्स देना ही पड़ता है, हम बिजली काट ही नहीं सकते। लेकिन अब तो मैं सिर्फ फलां फलां यानी एक दो आदमियों के साथ ही तिजारत करता हूँ, ये बुखारी की रिवायत है। अब आप देखिए कि ये कब की बात कर रहे हैं हज़रत हुज़ैफ़ा, नबी के बाद चले ताबईन का दौर होगा। आज क्या हालात है, आप आज सुबह लोगों से बात करके आते ना, एक शाम को जाते हैं वो बात बदल देते हैं, चार पैसे ज़्यादा देख के लोग ईमान बदल लेते हैं, रिश्ते छोड़ देते हैं, तिजारत तोड़ देते हैं, किए हुए सौदे तोड़ देते हैं, दी हुई ली हुई चीज़ें इधर उधर कर देते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये आज हम मुसलमानों के लिए कितना बड़ा लम्हा फिक्रिया। तबरानी की एक रिवायत है कि जिस शख्स में ईमानदारी नहीं उसमें ईमान नहीं। अब इस हदीस की रोशनी में अगर आज हम देखें अपने इर्द गिर्द रहने वालों में कितना ईमान है, मैं सोचती हूँ कभी कभी कि अगर किसी बहुत बड़े तराजू में सहाबा का ईमान डाला जाए, एक तरफ सिर्फ अबू बकर सिद्दीक का ईमान डाला जाए और उनकी ईमानदारी डाली जाए, और दूसरी तरफ आज के मुसलमानों की कसीर तादाद को डाला जाए, तो अबू बकर की ईमानदारी बढ़ जाएगी। बहुत सारे वाक़यात हैं, ये चूँकि अपनी जगह पूरा पूरा एक मौजू है और इस पर अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस में दरसों में बहुत तफसील से बात होती है। आज हम सिर्फ इसको एक चेकलिस्ट के तौर पर ले रहे हैं, जो जो टॉपिक आ रहा है उसको साथ साथ अपने पास चेकलिस्ट में लिखिए और पूछिए कि क़यामत की ये अलामत सुगरा जो हैं क्या मुझे अपने इर्द गिर्द दिखती हैं और मेरा इसमें अपना क्या अमल है, मुहासबा करते जाएं। अब अगली चीज़ इस लिस्ट में शहादत अज़्ज़ूरी, झूठी गवाही। क़यामत के करीब झूठी गवाहियाँ आम होंगी और सच्ची गवाही देने वाला कोई ना होगा। हज़रत तारिक बिन शहाब रदी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, क़यामत से पहले ये निशानियाँ ज़ाहिर होंगी, क्या जान पहचान के लोगों को सलाम कहना, तिजारत का आम होना, हत्ता के बीवी अपने शौहर की तिजारत में मददगार होगी, क़तअ रहमी, झूठी गवाही देना, सच्ची गवाही को छुपाना और कलम का ज़ाहिर होना। इसे अहमद ने रिवायत किया। अब ये सारी बातें अपनी जगह पे आएंगी, लेकिन यहाँ क्या ये सच नहीं है कि झूठी गवाहियाँ कितनी आम हैं? लोगों को साफ पता होता है कौन सच्चा कौन झूठा है, क्यों नहीं बोलते? हम क्यों अपने ताल्लुकात ख़राब करें? इसी तरह अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि क़यामत से पहले झूठी गवाही देने वाले और हक को छुपाने वाले होंगे। अहमद की रिवायत है। हम सोचते हैं शायद झूठी गवाहियाँ जो ये अदालतों में ही होती हैं और मुजरमों के मामले में, हालांकि आप देखिए कि अमली ज़िंदगी में हम देखें तो हम अपने ख़ानदानों में कितनी झूठी गवाहियाँ देते हैं। कुछ नहीं पता होता हमें किसी के बारे में, कोई किसी जगह चार औरतें बैठे किसी दूसरी औरत की बात करें, कहते हैं हाँ मुझे पता वो है ही ऐसी, और कोई बेचारी अच्छी भली भी हो लेकिन चूंकि आपकी बहू है तो उसके अंदर से नक्स निकालते हैं। दो बहनें बैठ जाएंगी तो अपनी बहुओं के गुनाह माफ़ कराएंगी, दो बहनें बैठ जाती हैं तो वो सासों के गुनाह माफ़ करवाती हैं। अक्सर आप देखिए कि हम दूसरे इंसानों के बारे में जो राय दे रहे होते हैं वो झूठी होती है, सिर्फ हमारी अजम्पशन और हमारे जन पर मुबनी होती है। इस तरह अगली अलामत क्या है, दियाउल अहदी, वादे को ज़ाया कर देना। क़यामत के करीब लोग वादे की परवाह नहीं करेंगे। अब्दुल्ला बिन अमर रदी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम्हारा क्या हाल होगा जब ऐसा वक्त आएगा कि नेक लोग बुरे लोगों से अलग कर दिए जाएंगे और सिर्फ बुरे ही बाकी रह जाएंगे, वादा और अमानत खलत मलत हो जाएंगी यानी इनकी परवाह न की जाएगी, लोग बिल्कुल बिगड़ जाएंगे, अच्छे और बुरे लोग आपस में यूं घुल मिल जाएंगे और आपने अपने एक हाथ की उंगलियाँ दूसरे हाथ की उंगलियों में डालकर दिखाई, यानी ऐसे ये देखिए, जैसे आप देखिए कि ये दो हाथ है ना, तो ये अब इसको लगा ले, ये अच्छा हाथ है, ये अच्छे लोग हैं ये बुरे हैं, यानी एक ही जगह महफलों में शादियों में पार्टियों में जो लोग हैं अच्छे बुरे आपस में मिल रहे होंगे, कोई किसी को नहीं टोकेगा कि तुम बुरे काम करते हो तो तुम संभल जाओ, लोग कहेंगे भाई रिश्तेदारियाँ कौन ख़राब करे, और कोई भी ख़ानदानी फंक्शन सोच ले, हर दर्जे का बंदा वहाँ आया होता है लेकिन लोग दूसरे को उसकी बुराई पर नहीं टोकते। साहब कराम ने अर्ज़ किया, अगर ऐसा वक्त हम पर आ जाए तो हम क्या करें? आपने इरशाद फरमाया, जिसे नेकी समझो इस पर अमल करना, जिसे बुरा समझो उसको छोड़ देना, इस वक्त अपने काबिल एतमाद लोगों के पास चले आना और दूसरों को इनके हाल पर छोड़ देना। इब्ने माजा की रिवायत है। और वादे के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जिसे अपने वादे का लिहाज नहीं इसका कोई दीन नहीं है। अब आप देखिए कि ये जो बात है कि जिसे नेकी समझो और दूसरों को छोड़ दो, इससे क्या मुराद है, आप क्या समझें इससे? यानी अपने काबिल एतमाद लोगों के पास चले आना, मतलब यह है कि अगर तुम्हें किसी जगह से खैर की बात मिलती है फिर तुम उससे अपना ताल्लुक जोड़ लो, और दूसरे लोग जो तुम्हारे अपने मामले के अंदर यानी ऐसे लगता है कि तुम उनसे घुलते मिलते हो तो तुम भी वैसे होने लगते हो, तो फिर उनको उनके हाल पर छोड़ दो, ये मतलब है। फिर इसी तरह आप देखिए, अगली अलामत है कतियतुर रहम, कतई रहमी, क्या मतलब होता है? रिश्तेदारों के जायज़ हकूक़ न देना। कतई रहमी का ये तो नहीं मतलब कि शादियों में ना जाना, उनकी महफिलों, मेहंदियों में, उपटन में, उनकी हर रस्म में शिरकत करना, ये तो नहीं सिला रहमी। कतई रहमी क्या होती है कि अपने रिश्तेदारों को नेकी की बात करना छोड़ देना और उनकी बुराइयों पे उनको रोकना छोड़ देना। सबसे बदतरीन कतई रहमी ये है जो आज के दौर में बड़ी आम है। हम दावते खाते लेते, शादियों में जाते, कभी ना मिलेंगे जिनको, उनको भी शादी पे ना बुलाएंगे ना तो वो 100 गिले करेंगे आपसे, अच्छा जी हमारे बगैर शादी कर ली। और ये कभी नहीं कहेंगे कि अच्छा आपने खुद कुरान की क्लास शुरू कर दी, मुझे तो बताया ही नहीं। तो कतई रहमी से मुराद क्या है कि लोगों को अच्छे बुरे पे कहना रोकना छोड़ देना। और दूसरा इसकी बहुत डिटेल्स हैं कि जो आपसे मिले उससे आप कटें या जो आपसे कटता उससे जुड़ें, ये असल में रिश्तेदारियों का मामला है। क़यामत के करीब कतई रहमी आम होगी। तारिक बिन शाह कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया क़यामत से पहले ये निशानियां जाहिर होंगी। वही हदीस पीछे भी आप पढ़ चुके हैं, अब इसमें से जो हिस्सा है वो कौन सा हम पढ़ लेते हैं। नंबर 3 देख लीजिए, कतई रहमी, ये हदीस सेम है इसलिए हम इसका सिर्फ कतई रहमी वाला हिस्सा पढ़ रहे हैं। इसी तरह अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया क़यामत से पहले जान पहचान वाले लोगों को सलाम करना, तिजारत का आम होना, हत्ता कि तिजारत में बीवी अपने शोहर की मददगार होगी और कतई रहमी आम हो जाएगी। नबी सल्लम ने फरमाया जिसने 3 दिन से ज़्यादा अपने भाई से तरके ताल्लुक़ किया और मर गया तो वो जहन्नुम में जाएगा। अबू दाऊद की रिवायत है। आज कितने सालों तक बहन भाइयों की लड़ाइयाँ रहती हैं, भला क्यों? उसने मेरी बेटी का रिश्ता छोड़ दिया था, उसने मेरी जायदाद दुबारी। सगे भाई बहनों के रिश्ते जो आप देखिए कि आज के दौर में मुतासिर हैं, तो दूसरों की हम क्या बात करें? आपको ये सारी बातें सुनते हुए क्या महसूस हो रहा है? कोई एक बात कह सके? बिल्कुल सच लगता है। कोई लगता है कि ये बातें हम आज से 1400 साल पहले एक नबी के मुंह से सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे ना? ऐसे नहीं लगता कि ये बिल्कुल आज के दौर में ये सब कुछ हो रहा है? चूंकि ये कॉमन है, आम फहम है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि अच्छा ये बातें तो हमें पता है। लेकिन अगर हम इन सारी बातों को नबी सल्लम की सदाकत पे लेके सोचें तो ये देखिए हमारे लिए कितनी बड़ी बात है कि अपने नबी के ऊपर और दिल की गहराई के साथ ज़रूर शरीफ भी पढ़ें और उनसे मोहब्बत भी करें। एक और अलामत क़यामत की अलामतों में कितमानुल हक़ की, हक़ को छुपाना। क़यामत से पहले हक़ को छुपाने वाले लोग पैदा होंगे। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया क़यामत से पहले झूठी गवाही देने वाले और हक़ को छुपाने वाले होंगे। अहमद की रिवायत है क़यामत से पहले लोग सच्ची गवाही छुपाएंगे और झूठी गवाही देंगे। तारिक बिन शहाब से ये रिवायत है। और ये हदीस तीसरी बार आ रही है और आप देखें तो इसमें नंबर 4 और 5, झूठी गवाही देना और सच्ची गवाही को छुपाना, ये बात ज़ाहिर है, अहमद की ये रिवायत है। फिर इस तरह आप देखिए कि अगली अलामत क़यामत की कुर्ब में क्या है। सुउल मुजावरती, हमसाए से बुरा सलूक करना। जौर क्या होता है? जीम वावरा हमसाया। जुवैरिया का लफ्ज़ बहुत आम है, नामों में हमसाई को कहते हैं। जौर से जारा, कुरान पाक में सूरह रात में आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, मुतजावीरातुन यानी ज़मीन के टुकड़े साथ साथ मिले होते हैं। तो हमसाया वो होता है जिसके साथ आपका ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा होता है। क़यामत के करीब लोग हमसाए के हकूक़ की परवाह नहीं करेंगे। अब्दुल्ला बिन अमर रिवायत कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया बेशक अल्लाह ताला बेहयाई और फुहश गो को पसंद नहीं फरमाता, या आपने यूँ फरमाया कि अल्लाह ताला बेहया और फुहश गो से बुग़्ज़ रखता है। क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि बेहयाई और फुहश गोई आम हो। कतई रहमी की जाए, हमसाए से बुरा सलूक किया जाए, खाइन को अमानतदार कहा जाए और अमानतदार को खाइन कहा जाए, यह अहमद की रिवायत है। हालांकि आपको पता है कि हमसाए के हकूक़ नबी सल्लम ने कितने बताए? क्या आपने कहा वल्लाही वो मोमिन नहीं? 3 बार आपने ये बात फरमाई, कौन? जिसका हमसाया उसकी अज़ियत से महफूज ना हो, बुखारी की रिवायत है। और आपने फरमाया कि जिब्राइल मुझे पड़ोसी के बारे में इस तरह वसीयत कर रहे थे मुसलसल कि मुझे गुमान हुआ कि इसे वारिस बना देंगे, बुखारी की रिवायत है। चलिए हम वेस्ट में रहते हैं, हम किसी के घर के आगे ट्रैश तो नहीं फेंकते, फाइन हो जाएगा। हम उसके घर के आगे जाके अपनी गाड़ी नहीं खड़ी करते, टो हो जाएगी, ये तो हम सब मानते हैं। लेकिन ये तो बताइए, सच्ची बात है, हर एक अपने ऊपर लेके सोचे, कब आखिरी दफ़ा मैंने अपने साथ वाले हमसायों से ताल्लुक़ रखा, उनको हाल पूछा, वो बीमार हैं, वो सेहतमंद हैं, वो कैसे हैं? इन मुल्कों में एक दूसरी किस्म की बेहिसी है। चलिए हमारे मुल्क में लोग ऊंची आवाज़ से म्यूज़िक चला देंगे, शोर कर देंगे, हाँ हमसाए के घर के आगे जाके अपनी साइकिल खड़ी कर देंगे। लेकिन कुछ ये तो पता होता है ना, कौन जीता है कौन मरता है। चंद महीने पहले किसी जगह की मुझे किसी ने बताया कि जो हमसाए थे एक बिल्डिंग में रहने वाले, तो उनको किसी एक घर से बदबू आई, तो उन्होंने पुलिस को कॉल किया। और जब पुलिस आई, घर का दरवाज़ा तोड़ा, तो उस घर के अंदर कोई बुड्ढा या बुड्ढी रहती थी, उसकी डेड बॉडी मिली। और जब सारी चीज़ों को सर्च किया, तो डॉक्टर से बताया कि कई महीने से ये अंदर मरा पड़ा। ये हमसाए का हक है। चलिए, हम नॉन मुस्लिम मुल्कों में रहने वाले अपने हमसायों को क्या दे सकते हैं, ज़रा शेयर तो करें। क्योंकि हम भी बड़े मुतमईन बैठे हैं कि चलो शुक्र है गोरे ही हैं हमारे इर्द गिर्द, हमने इनको क्या कहना है। हाँ, अपने हैं ना, फ़ौरन पूछते हैं। मेरे इर्द गिर्द देसी लोग रहते हैं, जिधर भी पंच क्या मैं बिरयानी बनाऊँगी ना, वो मुझे भेजेंगे। जब मैं बनाऊँगी तो उनको भेजूँगी, और वो पकौड़े बनाते हैं तो मुझे भेजते हैं। क्या हम इन मुल्कों में भी रह के सिर्फ अपने ही लोगों तक नहीं रहते? हालांकि आपको तो कुरान में आप पढ़ चुके हैं, सूरह निसा में तीन किस्म के हमसायों का जिक्र है, जारिल जुनूब, अजनबी हमसाया, रिश्तेदार हमसाया। तो कुछ करना चाहिए आपको अपने हमें हमसायों के लिए कि नहीं करना चाहिए? क्या किया कभी आप में से कोई अपना प्रैक्टिकल कोई तजुर्बा बताना चाहते हैं अपने हमसायों के लिए? जी आप।
मेरी कोशिश होती है कि मैं जो उनका कोई स्पेशल फंक्शन हो या कुछ हो, तो मैं जाके उनको मुबारक दूँ या कोई गिफ्ट दूँ, या वैसे रूटीन में जब भी मैं देखूँ तो मैं जरूर उनकी खैरियत पूछती हूँ।
किसी मौके पे आप उनको मिलती हैं या उनकी खैरियत मालूम करती हैं?
और मैं भी रूटीन में भी मिलते हैं,
रूटीन में भी। जी सही जी, आप क्या करते हैं?
मैं भाजी कोई चीज़ बनाओ ना तो मैं उनको भेजू ना, कभी तो खुश होते हैं, कहते हैं मुझे आपकी ये चीज़ अच्छी लगती
है। यानी आप खाना बनाती हैं तो हमसायों को भेजती हैं?
तो कहता है जब बनाओगे भेजना।
ठीक है, और कोई किसी का तजुर्बा?
जियो
है,
एक
तरफ इंडियन है।
लेकिन हमारी कोशिश होती है कि दोनों को खुश खुश रखें। आए इंडियन तो बहुत अच्छे हैं, वो वैसे ही वो जो जूस हैं वो तो बस हाथ वो मौके की ताक में होते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो तो हम ये
आपके साथ जग,
हाँ। तो फिर भी मेरे हस्बैंड ने कहा बच्चों को भी कि देखो कोई बात नहीं, बड़े हैं, आगे से कुछ नहीं बोलना।
यानी मैंने उनकी अजियत पे सब्र करना।
हाँ,
जी मैंने ये कोशिश की कि वो छोटी सी जो बुकलेट थी जिसमें है ये तो यू नेबर इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, तो मैंने उन्हें कहा देखो आप मेरी नेबर है, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और आपस में सलूक भी अच्छा है। तो मैंने कहा देखो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं आपको इस्लाम के बारे में बताऊँ विदाउट एनी कंपल्शन। रेली मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि ये दीन है, ये हमारा दीन ये कहता है, इसमें छोटी छोटी ये जो है ये आप पढ़ें और फिर देखिए ना आपको इस्लाम में तो है ही ज़बरदस्ती लगाएंगे।
जी अब आप देखिए कि इन्होंने कहा कि वो बुक माई नेबर दी, बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। अगर आप साथी ज़रूर उसको हासिल करें, बल्कि उसको मेरा लग स्कूल के रिसेप्शन पे हमारे पास पहले थी और भी मंगाई जा सकती हैं। वो ऐसी नहीं कि उसमें बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, पिक्चर्स के साथ बस एक सोच दी हुई है। तो कोशिश करते हैं अगर उसका हमें हैंड आउट मिले तो उसको वेबसाइट पर भी डालें और देखिए कि तड़प पैदा करें, इस चीज़ का दर्द पैदा करें कि हमने कैसे काम करना है। जैसे ये ऑनलाइन से लिख रही हैं कि मैंने अपने हमसायों की बर्फ साफ की, कितनी अच्छी बात है। कोई ग्रोसरी कर दें उनकी, कोई उनकी गाड़ी धो दें।
She's found a gift. She gave me a hug. She's really happy. She's very emotional. She's like, oh my God, it's so beautiful.
गुड, ये कह रही है कि मैंने भी वही बुक अपनी नेबर को अपनी कुलीग को दी और वो बहुत खुश हुई और उन्होंने मुझे हक दिया। क्या बड़ी बात है कि किसी वक्त किसी के दिल में कोई बात आ जाए तो पूरी कोशिश करें। क़यामत से पहले खुद गर्जी आम होगी, सेल्फिश, और इसको अरबिक में कहते हैं शुख शुख। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी सल्लम ने फरमाया वक्त जल्दी जल्दी गुजर जाएगा, नेक अमल कम हो जाएगा, खुद गर्जी पैदा कर दी जाएगी, फितने जाहिर होंगे और हरज बढ़ जाएगा। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल हरज क्या है? आपने फरमाया कत्ल कत्ल। इसे बुखारी ने रिवायत किया। क्या आपको लगता है खुद गर्जी है? सेल्फिश। माइंड योर बिजनेस, डोंट टॉक अबाउट रिलीजन। हर बंद अपने हाल में, और आप देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी खुद गर्जी है कि आपके पास इतना खूबसूरत इस्लाम है और आपके नेबर्स को नहीं आपने कभी इंट्रोड्यूस कराया। कभी ये घरों में रहते हुए हम कर सकते हैं कि हमारे पास बड़ी मज़े की चीज़ हो और हम अब दूसरे कमरे में रहने वाले से शेयर ना करें, कितना ऑकवर्ड लगता है। तो क्या ये खूबसूरत दीन जो इस्लाम हम दूसरों के साथ शेयर नहीं करेंगे? एक दफ़ा किसी की मैंने ऐसी बात पढ़ी थी या सुनी थी कि उन्होंने कहा कि चाइना के पास इंडस्ट्री थी ना, उसने आज दुनिया के हर घर में मेड इन चाइना की स्टैम्प पहुंचा दी। आप देखते हैं कि पेंसिल से लेके जहाज के पुर्जे तक चाइना बनाता है, और आप आज भी जाके घर में अपने गिन लीजिए कि चाइना की मोहर के साथ क्या कुछ है। तो मेरे लिए हंड्रेड चीज़ें होंगी। तो उन्होंने कहा कि उसने तो अपनी मेड इन चाइना की बुश बढ़ा दी, तुम मुसलमानों के पास इतना खूबसूरत दीन था, तुमने इसको क्यों नहीं घर घर पहुँचाया। सोचने की बात है, क्योंकि हम खुद गर्जियों में बड़े, हमें आज अपने सेल्फ बेनिफिट्स इतने अच्छे लगते हैं कि हम दूसरों के बारे में सोचते भी नहीं हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, क़्यामत के करीब वक्त घट जाएगा, इल्म उठा लिया जाएगा, फितने ज़ाहिर होंगे, लोगों के दिलों में खुदगर्ज़ी पैदा कर दी जाएगी और हरज आम होगा। सहाबा ने पूछा वो क्या है, तो आपने फरमाया कि कत्ल है। तो हमारे लिए इसमें से फिर अमल की बात क्या थी कि अपने आप को सेल्फिश नहीं बनाना। हर बंदा जब अपने फ़ायदे की बात करेगा तो सेल्फिशनेस तो आएगी। अगली चीज़ है उलूव सफलती, इखलाकी इकदार की पामाली, यानी एथिकली इंसान वीक हो जाएगा। जिस पे हमने पीछे भी बात की कि बच्चों का अखलाक बदल गया, टीचर्स के साथ बात करना, आंखों में आंखें डालना और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो क़्यामत के करीब आम होंगी। क़्यामत के करीब सबसे ज़्यादा कमीना और अहमक आदमी सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ शुमार होगा। सूटेड बूटेड लोग जिनके दिल में हो सकता है कितना ग्रज हो, लेकिन लोग उसको सिर्फ उसके ज़ाहरी हाल हुलिए और उसके ओहदे की वजह से बड़े बड़े लकब दे देंगे। हुज़ैफ़ा बिन जमान कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, क़्यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक दुनिया के अतबार से सबसे बड़ा खुश नसीब उसे समझा जाए जो ख़ानदानी कमीना और अहमक होगा। यानी पता नहीं उसका नसब भी ठीक है कि नहीं बेचारे का। और आज आप जिस माशरे में जी रहे हैं, हमें तो पता भी नहीं है कि किसकी माँ कौन थी और किसका बाप कौन था। बड़े बड़े नाम आप देखिए, हम किसी पर तनकीद नहीं करते, लेकिन अगर आप देखें तो आज जो दुनिया में बड़े बड़े नामों के साथ लोग मारूफ हैं, आपको क्या पता कि वो उसकी माँ कौन थी। और इवन ख़ास तौर पे वेस्ट में तो ये चीज़ आम है, बग़ैर शादी के ताल्लुकात होते हैं कि औरत के चार बच्चे हैं तो वो चार मुख्तलिफ दोस्तों से भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ें फिर लोगों के अंदर से वो एक इखलाकियत और एक ख़ानदानी निज़ाम जो होता है उसकी मोहब्बत निकाल देती है। फिर इसी तरह क़्यामत की अलामतों में क्या अलामत है, लोग जाहिलों से इल्म हासिल करेंगे। हज़रत अबू उमैया अलजुमही से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, ये क़्यामत की निशानियों में से है कि लोग जाहिलों से इल्म हासिल करेंगे। इसे तबरानी ने रिवायत किया। तो ज़रूर सोच के इल्म हासिल किया करें। मुझे तो पढ़ के फिर खौफ आया कि अगर आप मेरे सामने भी आके बैठ गए हैं तो पहले चेक कर लें कि कहीं आपको इल्म के नाम पर जहालत तो नहीं दी जा रही। कैसे पता चलता है कि जहालत मिल रही है कि इल्म मिल रहा है? देखिए, जहालत हमेशा बंदे को बेअमल बनाती है और अल्लाह ताला से दूर बनाती है, गलत चीज़ों में डालती है। सच्चा इल्म आपको बाअमल बनाता है, अपना मुहासबा करने वाला बनाता है, अल्लाह का कुर्ब देता है। अगर दिन ब दिन आप जजमेंटल हो रहे हैं, दूसरों पे तनकीद करते हैं और अपने आप को मुफ्ती और नेक और पता नहीं क्या कुछ समझ रहे हैं, तो फिक्र कीजिए कि आप ठीक जगह से फिर नहीं पढ़ रहे। तो अल्लाह ताला हम सबको सही इल्म लेने वाला बना दे। अगली अलामत, अत तस्लीम लिल मारिफती, सिर्फ जान पहचान वालों को सलाम करेंगे लोग, ये क़्यामत की निशानियों में से। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये क़्यामत की निशानियों में है कि एक आदमी दूसरे आदमी को सिर्फ जान पहचान की वजह से सलाम करेगा। इसी तरह अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, ये क़्यामत की अलामत है कि आदमी मस्जिद से गुजरेगा लेकिन दो रकत नमाज अदा नहीं करेगा। अस्तग़फिरुल्लाह, यानी मस्जिद में जाके भी नमाज नहीं पढ़ेगा और सलाम सिर्फ उसे कहेगा जिसे वो पहचानता है। ये तबरानी की रिवायत है। हालांकि हुक्म क्या भला, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि जानने और अनजानने वाले सबको सलाम करो। कैसी बातें सच्ची हैं, कोई बात ऐसी नहीं है कि जिसके बारे में कोई कहे कि नहीं ये बात तो ऐसी और वैसी होगी। तो फिर अमल क्या करेंगे आप और मैं, सिर्फ अपनों को सलाम करें यहाँ भी। आप देखिए एक आदत बनाइए, माशाल्लाह हम लोग जिन मुल्कों में रहते हैं, आप यहाँ अपने लोगों की कमी नहीं है। सड़कों पे जाते हैं, वॉक करते हैं, डॉक्टर्स पे जाते हैं, ग्रोसरीज में, जहाँ भी हैं, नियत कीजिए कि मैंने जो भी मुझे मुसलमान मिले उसको अस्सलामुअलैकुम कहना है। और गोरा या मतलब ऑफकोर्स आप अगर सिस्टर हैं तो बेहतर है कि सिस्टर से बात करें, हया का भी ये तकाजा है, तो उनको हाय कह दें, उनको आप थोड़ा सा स्माइल दे दें, हेलो हाय हाउ यू डूइंग, दैट्स इट जी। और मुसलमानों में सिर्फ पाकिस्तानी लोग नहीं आते, अफ्रीकी, सोमाली सिस्टर्स सब आती हैं, और मैंने देखा है कि सोमाली सिस्टर्स इस बात में बहुत अच्छी होती हैं जी, और वो माशाल्लाह जवाब ऐसा देती हैं कि बंदे का दिल खुश हो जाता है। ये बिल्कुल, तो ये आम किया करें, घर में करेंगे तो बाहर भी करेंगे। अगली क्या निशानी है, तरकुल अम्र बिल मारूफ व नहय अनिल मुनकर, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का तर्क कर देना। क्यामत के करीब अच्छे और बुरे लोग सब एक दूसरे के साथ घुल मिल जाएंगे, कोई किसी को नेकी का हुक्म नहीं देगा ना बुराई से रोकेगा। ऐसा होता, कितनी दावतें खा पी के हम आ जाते हैं एक दूसरे के घरों में, शादियों में, कितने कितने घंटे सफ़र करके लोग एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, एक हफ्ता रह के आएंगे, लेकिन क्या किसी बुरी बात पे उनको रोक सके? क्या कहते हैं लोग, हम क्यों बुरे बने, हम क्यों ताल्लुकात ख़राब करें? बाज़ दफ़ा तो और ही जुल्म कर देते हैं कि हम उनके रंग में मिलकर उन जैसे हो जाते हैं, फिर कहते हैं क्या करें, फिर अपनों में गए थे ना। जैसे एक सिस्टर थी तो वो बाहर अमेरिका काफ़ी साल से रह रही थी, तो माशाल्लाह हर लिहाज से नपी तुली, बहुत अच्छी, लेकिन जब पाकिस्तान से होके आई तो कहने लगी मुझे लगता है मैं मुनाफिक हो गई हूँ कि मैंने अपने रिश्तेदारों की खुशी के लिए सब कुछ किया। इन मुल्कों में रहते हुए मैंने तो आज तक कभी शॉपिंग भी नहीं करने गई इस तरह, जैसे लोग पाकिस्तान में जाते हैं कपड़े खरीदने, जूते खरीदने, इस तरह का तस्वीर नहीं आता इधर। और अगर आप अपने मुल्कों में देखें तो लोगों की ज़िंदगी का मकसद ही ये दिख रहा होता है। तो मकसद क्या है कहने का, कि अगर हम पाकिस्तान भी जाते हैं, जाएँ शौक़ से जाएँ, अल्लाह ताला आपको ले जाए, छुट्टियों में जाते हैं तो नीयत करके जाया करें कि मैंने अपने रिश्तेदारों को नेकी की बात करके आनी है। और माशाल्लाह हमारे काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो बड़े शौर से जाते हैं हर जगह, आप समर है, कई जगह से हमें इस तरह की आती हैं कि मैंने पाकिस्तान जाना है, उधर जाना है, किधर क्या करें। तो उसका हमने एक, बल्कि नॉर्वे में भी तरीका रखा हुआ है कि जो सिस्टर जाती हैं उनकी अप्लीकेशन जब आती है तो फिर उनके साथ छोटी सी मीटिंग करते हैं, और ऑफकोर्स हमें समझ आती है कि ये उनका उज़र है, जाना है। ना सिर्फ ये कि दुआओं के साथ भेजते हैं बल्कि फिर उनको दावा मटीरियल देते हैं, सीडीज़ देते हैं कुछ ऐसा, फिर मैं उनसे पूछती हूँ, मैं खुद मिलती हूँ कि देखिए आप जहाँ जा रही हैं अपना एक बीच छोड़ के आए, फिर उनको छोटी सी ट्रेनिंग दी जाती है, फिर वो कहती है अच्छा हम वहाँ जाके आपका दर्स रख लें तो आप ऑनलाइन से आएंगे, फिर वहाँ वो बाज़ दफ़ा एक छोटी सी क्लास शुरू कराते हैं। कई जगह ऐसी छोटी छोटी मुझे जहन में आ रही है इस वक्त भी कि जहाँ सिर्फ एक दफ़ा कोई गया और उसने हल्की फुल्की सी कोशिश की, फिर सीडीज़ दे के किसी एक अच्छी बच्ची को जिसको ज़रा बात करनी आती थी, किसी को तजवीद आती थी, तो वो ना सिर्फ ये कि वो क्लास है कोर्स, बल्कि कोर्स है बाकायदा कुरान शुरू हो चुके हैं। तो नियत करें, हमारे रिश्तेदारों का हम पे बहुत हक है, क्योंकि हमने इस दुनिया में नहीं बैठे रहना कि हम इधर इधर रहें। फिर इसी तरह आपने फरमाया कि बहुत जल्द ऐसा वक्त आने वाला है कि नेक लोग उठा लिए जाएंगे, सिर्फ बुरे लोग बाकी रह जाएंगे, वादा और अमानत खलत मलत हो जाएंगे, यानी इनकी परवाह न की जाएगी, लोग बिल्कुल बिगड़ जाएंगे, अच्छे और बुरे लोग आपस में यूं घुल मिल जाएंगे। फिर आपने अपनी उंगलियां उंगलियों में डालकर दिखाई। सावा ने पूछा ऐसा हो तो हम क्या करें? आपने फरमाया जिसे नेकी समझो इस पर अमल करना, जिसे बुरा समझो उसे छोड़ देना, और उस वक्त अपने काबिले एतमाद लोगों के पास चले जाना और दूसरों को उनके हाल पे छोड़ देना। और हदीस देखिए तिर्मिज़ी की, कितना डरा देने वाली है कि जब लोग लोगों को बुराई पे रोकना और नेकी को हुक्म करना छोड़ेंगे तो अल्लाह ताला इन पर अज़ाब नाजिल करेगा, फिर वो दुआएं मांगेंगे तो दुआ कबूल नहीं होगी। अब इस पे आप कुछ बोलें, मेरा ख्याल है कि अब आपको इस पे कोई ना कोई बात ज़रूर करनी चाहिए कि आज हम इस अमर बिल मारूफ को किसका काम समझते हैं। सबसे पहले तबलीगी जमात का है ना, वो लगे हुए बेचारे तबलीग पे। दूसरे दर्जे में हम इसको काम किसका कहते हैं? न्यू मुस्लिम्स का, कन्वर्ट हुए ना, अब वो लगे हुए बस लोगों को बुलाने। तीसरे दर्जे पे हम कहते हैं ये चंद आलिमों का काम है। हाँ वो हमारे शहर में हैं, एक बाजी पिछले 20 साल से दर्स देती हैं। क्या मेरा और आपका ये काम नहीं है? हम खुद से पूछें क्या हकीकत में हम सब इस चीज़ के ऊपर अपने आप को कभी भी माफ़ कर सकते हैं कि हमने ये काम नहीं किया? अब सवाल पैदा होता है कि ये काम करें तो कैसे करें, ये अब आप बताइए, क्योंकि हर काम के करने का एक तरीका भी होता है ना, तो अगर हमने उस तरीके को अपना लिया तो इंशाल्लाह ताला हमें करना आसान होगा। कुछ प्रैक्टिकल बातें लिखिए आप भी इधर, और आप लोग शेयर करें कि हम किस तरह से इस काम को कर सकते हैं। कॉमन ग्राउंड से बात शुरू करनी है कि जहाँ भी ये हालात होंगे उस दौरान हम उनके साथ मौके की मुनासिबत से बात करें जी। और देखिए कि यहाँ आपको थोड़ा सा सोचना सिखाऊं कि सिर्फ बोल के, जैसे आप कुर्सी में सजा के आप बैठ गए दर्स देने लेने, इसी में अमर बिल मारूफ नहीं होती। बेस्ट अमर बिल मारूफ जो है वो अमल کر کے موقع پہ دکھانے کی ہوتی ہے. مثلاً آپ دیکھیے کہ ہم اپنے گھروں میں شادیوں کے نام پہ اور کئی مختلف مواقع پہ ہم اپنے ساتھیوں کو ملتے ہیں نا, جب ملتے ہیں تو پھر اس ملنے ملانے میں کئی موقع تحفے دیتے ہیں, آپ اس میں کوئی اچھی چیز دیں, اپنے گفٹس کا معیار بدل لیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی کسی کو شادی میں کیا دیں, پھر جوڑے ہی دے دیتے ہیں جو پہلے ہی اتنے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ دوسرے آپ کی پسند کیا پہنتے بھی نہیں ہیں, وہ ایک دفعہ پہن بھی لیں گے آپ کے شوق کے لیے پیچھے کر دیں گے. آپ وہ چیزیں دیں جو لوگ نہیں لیتے. کبھی تو پڑھیں گے نا, سی ڈیز, بکس, ریکارڈنگس, یہ ایک پریکٹیکل طریقہ ہے. جی اور کوئی ٹپ بتائیے. یہ لوگ لکھتے ہیں کہ بکس دیں, آپ ان کو اچھے اخلاق سے نیکی کا حکم دیں. حکم تو نہیں دیں گے, ریکویسٹ کر سکتے ہیں. بہرحال جی پریکٹیکل اگزامپل بنے, یہ بہت بڑی بات ہے. آپ کے اپنے گھروں میں جب شادی ویاہ کے موقع ہیں تو پریکٹیکل عمل دیجیے. ٹھیک ہے, اب آپ نے کہا کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ ایسے کام نہ کریں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں, کتنے دن ناراض رہیں گے آپ سے؟ چلیے اب دیکھیے, یہ ان سسٹر کی بچی کی شادی ہونے والی ہے اور یہ کہتی ہیں کہ میرے جو رشتے دار ہیں یا دوست رشتے دار اس بات پہ ناراض ہیں کہ تم مہندی کیوں نہیں کرتی. کیا اور کیا کہتے ہیں, گیدرنگ کرو. یہ چلیے آپ مثال لیجئے کہ یہ کر لیتی ہیں یہ سب, پھر کیا ہوگا؟ آپ کے والے سارے اس مہندی سے سب خوش ہو کے جائیں گے آپ سے؟ وہ ناراض پھر بھی ہوں گے. جن کو ناراض ہونا ہے وہ پھر بھی ناراض ہوں گے. اور اگر وہ سارے بھی ناراض ہو گئے, کیا آپ کی بچی کو خوشیاں دے سکتے ہیں؟ اور اگر اس مہندی کے نام پہ کوئی ایک ایسی حرکت اللہ کو بری لگ گئی تو اس کی سزا بچی بچے کو نہیں مل سکتی؟ دیکھیے ہمیں اپنے اللہ سے گھر بسوانے ہیں. اللہ خوش ہے نا تو ہمارے گھر بسیں گے, لوگ خوش بھی ہوں گے. اللہ ناراض ہوا تو ہمیں کبھی بھی خیر نہیں ملے گی. تو کس سے ڈرنا ہے؟ آج صبح ہی پڑھا نا کہ جس سے زیادہ لیتے اس کا زیادہ شکریہ ادا کرو. کوئی کبھی ایک گفٹ دیتے تھینک یو کہتے نہیں تھکتے, لیکن اللہ سے دن رات صبح شام لیتے ہیں لیکن ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے. جی آپ کے یہ جی بالکل, یہ لکھتے ہیں کہ آئی بلیو پیپل ہو آر اگینسٹ می آر ناٹ بیکاز آف مائی دین, دیر آر پرسنل گرجز, سو وائی شوڈ وی اسٹے بیک فرام آور دین. بالکل سچ ہے یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ لوگ ناراض ہوتے ہیں, یہ آپ کے دین سے نہیں ہوتے. انہوں نے کسی وقت کی کوئی نہ کوئی بات دل میں پالی ہوئی آپ کی. وہ ایسے موقعوں پہ خوشی غم پہ وہ بلیک میل کرتے ہیں کہ ہم بہانہ بنائیں تاکہ ہم ان کو باتیں کریں. تو بہرحال ساری بات کا خلاصہ کیا, دیکھیے امت مسلمہ کا تو وجہ حیات کیا ہے, کن تم خیر امت اخرجت للناس, تم وہ بہترین قوم ہو جو لوگوں کی اصلاح کے لیے نکالی گئی ہے. تو ہر ممکن کوشش کریں. دیکھیے مسلمان کا ہر موقع دعویٰ کا موقع ہوتا ہے, تبلیغ کا موقع بنا لیں. مجھے ایک بڑی پیاری بات یاد آ گئی, اس پہ انشاءاللہ ہم آج کے اپنے سیشن کو پورا کریں گے. ایک عالم ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس میرا دوست آیا اور مجھے کہنے لگا کہ میری بیٹی جو ہے اس کی اپنے شوہر سے کچھ انبن ہے, تو حالات کچھ سنورتے ہوئے نہیں دکھتے, تو مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں, آپ کا کیا خیال ہے کہ میں طلاق لے لوں, بیٹی کو دلوا دوں یا کچھ. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے چند سوال کیے کہ مسئلہ کیا ہے, کیا تمہارا جو داماد ہے کیا اس کے دین میں کوئی بہت بڑا نقص ہے؟ کہنے لگا نہیں. کہا بس ایسے ہی مزاج نہیں مل رہے, جو ہمارے یہاں ایک عام بات ہے. کہتے ہیں کہ جس نے میرے سے یہ بات پوچھی, میرے دوست, وہ بھی دین کے کام میں کافی آگے تھے اور دعوت کے کام میں تھے, تو کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ دیکھو میرے بھائی, تم یہ سوچو تمہاری بیٹی کی اپنے میاں سے نہیں بنی, چند دن لڑائی جھگڑے ہیں پھر طلاق لو گے, بیٹی گھر آ گئی, اب تمہارے دماغ پہ کیا فکر ہے؟ اب اس بیٹی کا ایک اور رشتہ ڈھونڈو, پھر لوگ نئے لوگ آئیں گے اس سے سارے معاملے چلے پڑیں گے, پھر اس کے بعد بچی کی پھر شادی کرو گے, پھر نئے نئے رشتے ہوں گے, کتنی پھر ایک لمبی کہانی. اس سارے پروسیس کے دوران تمہارا سب سے زیادہ متاثر کیا ہوگا؟ دین کا کام. اب اس کام کے بعد بھی تمہیں نہیں پتا کہ جس جگہ اس کی دوبارہ شادی ہو رہی ہے وہاں بنے گی نہیں. تو کہنے لگا میرا مشورہ ہے کہ بیٹی سے کہو جیسا ہے اس کے ساتھ گزارا کرو اور اس کو اس کے حال پہ چھوڑو اور تم اللہ کے کام شروع کر دو. آپ غور کر کے دیکھیں آج ہم میں سے بہت ساروں کا دین سے رکنے کا بہت بڑا عذر کیا ہوتا ہے, بچیوں کے مسئلے, بچوں کے مسئلے, اس کی شادی, اس کی منگنی. کسی کے گھر شادی کی خبر کیا پڑتی ہے دل میں غم پڑ جاتا ہے. یقین کریں کہ اللہ یہ شادی اب اس کے دین کی بربادی نہ ہو جائے. تیاریوں سے لے کے گھر بسنے اور بچیوں کے گھروں میں جانے کے بعد کی رسموں تک ہماری نماز, روزہ, دین بالکل واجبی رہ جاتا ہے. تو مسلمان کون ہوتا ہے؟ ہر موقع کو دعویٰ کا موقع بنا لے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس پہ اپنے عمل والا بنا دیں. اور اللہ تعالی ہم سب کی چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.